Welcome to the episode 3 of Empathy Series, a weekly conversation about mental health and personal development. I'm your host, Vipin Farkya. आज का एपिसोड हमने कुछ अलग किया, हम लोगों ने हिंदी में रिकॉर्ड किया है साइकोलॉजिस्ट दीपक कश्यप के साथ, जो कि यूजुअली यूएस और कनाडा में प्रैक्टिस करते हैं. ये कॉन्वर्जेसन हम लोगों ने स्काइप पर रिकॉर्ड किया है एंड इट्स ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि LGBTQ है. हम लोगों ने इसे हिंदी में रिकॉर्ड करने का इसलिए चूज़ किया बिकॉज LGBTQ के बारे में ऑलरेडी एजुकेशन बहुत कम है और हिंदी में कंटेंट और भी कम है. तो आई होप आप लोग को ये कॉन्वर्जेसन अच्छा लगे.
चलिए हम बात करते हैं LGBTQ कम्युनिटी के बारे में. तो पहले हम शुरू करें किसी और चीज़ से, तो बेसिक से शुरू करते हैं. LGBTQ होता क्या है?
देखिए, LGBTQ एक एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर कम्युनिटी के लिए. क्वेयर सेक्सुअली वो कोई भी है जो प्रॉपरली या मतलब कह लीजिए हेटरोसेक्सुअल कपल नहीं है. हेटरोसेक्सुअल नहीं है सेक्सुअली स्पीकिंग, और जो थोड़ा अलग है सोसाइटी से उसको क्वेयर कहते हैं. फिर वो लेस्बियन भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, इंटरसेक्स भी हो सकता है. बहुत तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्ट्रेट नहीं है. तो उन्हें क्वेयर कहा जाता है.
हाँ, तो हम लोग एक एक लेटर से शुरू करते हैं. तो लेस्बियंस क्या होते हैं? जो हम अगर किसी को लेस्बियंस लेबल करते हैं तो वो क्या होते हैं?
देखिए, ये सारे लेबल्स होते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन के, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब होता है कि मुझे झुकाव और लगाव किसकी तरफ है, और मुझे आकर्षण, झुकाव और लगाव किसकी तरफ. तो अगर मैं लड़का होने के बाद लड़की को पसंद करता हूँ तो मुझे स्ट्रेट कहते हैं, और मैं लड़का होके लड़के को पसंद करता हूँ तो मुझे गे बोलते हैं. अब मैं लड़की होने के बाद लड़की को पसंद करता हूँ तो मुझे लेस्बियन बोलते हैं, और मुझे लड़का और लड़की दोनों पसंद आते हैं तो मुझे बाइसेक्सुअल कहते हैं.
ओके, तो पहले हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. मेंटल हेल्थ एक वैसे ही बहुत ही टैबू वाला टॉपिक है जो हम लोग इंडिया में तो स्पेशली डिस्कस नहीं करते हैं कभी भी. मेंटल डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हमेशा लोग उसे अगर कोई मेंटल डिजीज के थ्रू जा रहा है तो या तो उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं कि तू बड़ा हो जा या भूल जाए, ऐसा भी तो सब छोटी मोटी बात है, या हम उसको एक निचले दर्जे का समझते हैं. तो स्पेसिफिकली LGBTQ कम्युनिटी में आपने किस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स देखे हैं? और वैसे ही हम लोग अभी जब आर्टिकल 377 अभी पास नहीं हुआ था उसके पहले तो लोगों को कुछ अलग ही लगता था LGBTQ के बारे में. अब कुछ लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि अब तो लॉ ने बोल दिया कि ये हो सकता है तो होता ही होगा. इट्स नॉट जस्ट अ फेस फॉर समवन.
सही बात है. देखिए क्या होता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमारी कंट्री में वैसे ही इंफॉर्मेशन बहुत कम है, और उसके ऊपर आप गे, लेस्बियन, क्वेयर मेंटल हेल्थ की बात जब करते हैं तो वो और भी कम है, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मेंटल हेल्थ पे भी इतनी बात नहीं कर पा रहे हैं. तो क्वेयर मेंटल हेल्थ के ऊपर तो खैर उम्मीद कम ही है. ज्यादा जो इशू होते हैं क्वेयर कम्युनिटी के वो होते हैं अकेलापन, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी. ये सारी चीजें होती हैं जो जो मेन स्ट्रीम लोगों, स्ट्रेट लोगों को भी होती हैं, और जो समलैंगिक समुदाय के लोगों को भी होती हैं या बाइसेक्सुअल लोगों को भी होती हैं. जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनाया नहीं जा रहा है, या मुझे कम रखा जा रहा है, या मुझे अलग करके देखा जा रहा है, मेरी कम्युनिटी नहीं है, और अगर मैं बाहर आके मैंने लोगों को बताया कि मैं गे हूँ या मैं बाइसेक्सुअल हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, तो मुझे समाज अपनाएगा नहीं, मुझे समाज छोड़ देगा, मुझे मेरे मम्मी पापा अपनाएंगे नहीं. तो एक बहुत डर सा बना रहता है, और डर कहीं ना कहीं एंजाइटी बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात?
तो जैसे आपने अभी कहा कि अब मुझे कमिंग आउट को हिंदी में बोलना तो नहीं आता, बट कमिंग आउट एक बहुत बड़ी चीज है इस कम्युनिटी के लोगों के लिए.
अपना सत्य बताना.
अच्छा,
कमिंग आउट बोलते हैं कि मैंने आपको सच बताया.
ओके तो जैसे इस कम्युनिटी के लोगों को हमको पहली बात तो हमने जैसे कल जो कॉन्फ्रेंस या जो भी वर्कशॉप थी उसमें डिस्कस करा आपने कि पहले
हाँ
खुद को सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप दूसरे मतलब सामने अपने माता पिता को बोलें उसके पहले खुद को सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन हैं। तो उस बारे में बात करते हैं हम लोग कि खुद को सच बोलना ये जो प्रोसेस है इसको बहुत ज़्यादा कमिंग आउट को बहुत बड़ी चीज़ बताया गया और ये बहुत बड़ी चीज़ है भी। तो ये क्या प्रोसेस होती है क्योंकि मुझे सर समझा सकते हैं आप।
हाँ देखिए क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं, जब आप प्यूबर्टी में जाते हैं, तब आपको पता लगने लगता है कि आप सेक्सुअली डिफरेंट हैं दूसरों से, कि आप, समाज आपको बोल रहा है कि आप लड़के हैं और आपको लड़की पसंद आ रही है, लेकिन आप
हाँ
कह रहे हैं मैं तो लड़का हूँ मुझे लड़का ही पसंद आता है, या मैं लड़की हूँ मुझे लड़की पसंद आती है, या मुझे दोनों पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, मैं अलग फील करने लगता हूँ, मैं डरने लगता हूँ कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो लोग मुझे समझेंगे नहीं, मुझे मानेंगे नहीं, अपनाएंगे।
बिल्कुल
तो इसीलिए सबसे पहले अगर मैं खुद को अपनाऊं, खुद को समझ लूं, कॉन्फिडेंस से खुद को ये कह दूं कि मैं बुरा नहीं हूं, तो काफी हद तक क्या हो सकता है कि मैं दूसरों का सामना करने की हिम्मत जुटा सकता हूं। लेकिन जब तक मेरे खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं दूसरों के सामना कैसे करूंगा? तो इसीलिए हम कहते हैं कमिंग आउट, अपना सत्य अपनाने से पहले, सत्य बताने से पहले आपको खुद को समझना होगा और अपने अंदर वो विश्वास पैदा करना होगा कि अगर लोग नहीं भी मानते हैं तो भी मैं सही हूं।
तो आपने जैसे कहा कि हमको पहले खुद को बताना होगा तो बहुत लोगों को सबसे पहले देखा जाए तो मैं 21 साल का हूँ। मैं 10 12वीं तक मैंने जो भी पढ़ाई करी है उसमें कहीं पर भी मुझे ये तो बताया ही नहीं गया था कि सेक्सुअलिटी क्या होती है और हेट्रोसेक्सुअलिटी के बारे में ही बताया गया है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि मैं हेट्रोसेक्सुअल नहीं हूँ बट उन लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो लोग रिसर्च कर सकें या समझ सकें। ये बैकवर्ड या रूरल एरियाज़ में रहते हैं जो या जो छोटे सिटीज़ में रहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं या उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए।
अवेयरनेस के लिए हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो है एजुकेशन और बात। हम जब तक अपना मुंह खोल के बात नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं लाएंगे, तब तक मुश्किल
बिल्कुल
हो जाएगी किसी भी चीज की।
बहुत बहुत ही मुश्किल होगा। अब जैसे आप तो यूएस कनाडा में रहते हैं या उधर प्रैक्टिस करते हैं तो आपने उधर के एजुकेशन सिस्टम्स या बुक्स या लिटरेचर में देखा है ये कि अब नई नई चीज़ें आ रही हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में।
वहां पर इंक्लूड करता है होमोसेक्सुअलिटी को, सेक्स एजुकेशन वहां इंक्लूड करता है बायसेक्सुअलिटी को, सारी चीजों को वहां पर। ऐसा नहीं कि सेक्स एजुकेशन केवल स्ट्रेट लोगों को दी जाती है।
तो देखा जाए तो फिर हम लोग अगर ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट को ब्लेम तो नहीं कर सकते बट उनका भी बहुत बड़ा पार्ट है एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स वगैरह में लाने के लिए। बट
करेक्ट,
आप मुंबई में आपने देखा है कि ज़्यादा अवेयरनेस है लाइक मेट्रो सिटीज़ में इन जनरल। अभी आप इतने सारे सिटीज़ में लेक्चर देके आए वहाँ।
ज्यादातर मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि हम अकेले रहते हैं, हम रिश्तेदारों के साथ उतना नहीं रहते हैं,
हाँ
और मेट्रो सिटीज में क्या होता है, एजुकेशन काफी वेस्टर्न होती है। हम अपने अंदर ही बंधे हुए नहीं रहते हैं, हम दूसरों को भी देख सकते हैं बाहर की दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है। सही है, और अभी इंटरनेट से
हाँ
क्या, छोटे शहर में भी बैठ के आप देख सकते हैं कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन मेट्रो सिटीज में ये वाला कल्चर बहुत लंबे समय से है कि बाहर की दुनिया से हमारा जुड़ाव रहता है, हमें पता रहता है कि बाहर की दुनिया में भी क्या हो रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि,
जी
और
जी
खुद की सभ्यता को भी समझे ना। हम तो उस लैंड से हैं जहाँ कामसूत्र लिखी गई, जो दुनिया
जी
की सर्वप्रथम कम्युनिकेशन मैनुअल है। हम खुद की कल्चर को भी तो देख सकते हैं ना।
वो खुद के कल्चर हमारे खुद के कल्चर में से ही वो चीज़ आई है बट उसको भी हम लोगों ने निचला कर दिया उसको भी हम लोगों ने हटा दिया हमारे कल्चर में से। एक और चीज़ ये है कि जैसे एनजीओज वगैरह बहुत सारे हैं, और आपने मेट्रो सिटीज में तो बहुत सालों से चल रहा है, जैसे अब गे बॉम्बे कल पता चला कि 21 सालों से चल रहे हैं, जबकि अभी तो 6 महीने हुए हैं उसे लीगलाइज करे हुए। तो मतलब इतने सालों से सपोर्ट है लोगों के लिए इन सिटीज में, तो छोटे सिटीज में आपने देखा है कि सपोर्ट जाता है या लोग खुद इनिशिएटिव लेके खोल रहे हैं?
छोटे सिटीज में अपना सपोर्ट नहीं है क्योंकि वहां पर उतनी एजुकेशन नहीं है ना।
होपफुली
तो
ये जो
छोटे सिटीज में
पॉडकास्ट हम
अपना
लोग
सपोर्ट।
रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जा सकता है छोटी सिटीज में, हिंदी में जो कर रहे हैं। कल एक बहुत ही नई चीज़ जो हमने देखी थी कि एक मदर आई हुई थी वहाँ पर, जो कि मतलब उनका ऑफ कोर्स बच्चा गे है और वो अपने बच्चे के लिए ये सब कर रही है, उनका खुद ने एनजीओ बनाया ओनली फॉर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं अपने, जब आप कम आउट भी कर रहे हैं तो भी फर्स्ट यू हैव टू कम आउट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को पहले आपको बताना होता है। तो पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स स्पेसिफिकली कैसे ले रहे हैं इसको, क्या आर्टिकल 377 के बाद
देखिए
ये कुछ नया आया है?
इंडिया में हर दूसरी चीज, हर जैसे कहते हैं ना, हर घर की रोटी अलग बनती, ठीक उसी तरह से हर का रिएक्शन इसके लिए अलग होता है। कुछ लोग इसे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। और ना हम चाहें कि आगे लोग समझें इसे, उतना हमें समझाने की कोशिश करनी होगी। बिना समझाने की कोशिश किए अगर आप सोचें कि लोग समझ जाए तो ऐसा नहीं होता।
मुझे एक ऐसा लगता है कि लोगों को जो नहीं पता होता है उससे वो डरते ज्यादा हैं, इसलिए वो अलग रहना चाहते हैं उससे, उनको नहीं पता है कि ये क्या है तो वो उससे डर डर के नहीं जानना चाहते हो।
कहीं ना कहीं डर बहुत।
आर्टिकल 377 अब डिक्रिमिनलाइज तो हो चुका है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा गैप है डिक्रिमिनलाइजेशन और होल पूरी पॉपुलेशन को एजुकेट करने में। तो ये पॉडकास्ट उसी सेंस में बनाया था कि हिंदी में इसलिए बनाया हम लोगों ने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो स्पेशली जो भी लोग सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनाइए, अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं मोस्टली द एवरेज एज इज़ 18 to 24 ईयर्स ओल्ड। तो आप अपने पेरेंट्स को सुनाइए तो एटलीस्ट उन लोगों को कुछ आइडिया मिलेगा एंड दे कैन गेट एक्सपोज टू दिस कम्युनिटी विच एग्जिस्ट विद इन अस, बट हम लोग को पता ही नहीं है वो लोग क्या है। एंड आई होप यू गाइज लाइक द कॉन्वर्जेशन एंड डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो एंड लीव अ कॉमेंट। थैंक यू।